रात का वक्त था। माधव और राधिका दोनों ही अपने अपने कमरे में बैठे थे। आज दोपहर में हुई मुलाकातें और उनके बीच हुई चंद बातें अब भी उनके जहन में बसी थीं और दोनों ही अपने अतीत के पन्नों को पलटते इन बीते पलों को याद कर रहे थे, जिन्हें वो कभी एक लम्हे के लिए भी नहीं भूले थे। फ्लैशबैक। मम्मी, मुझे ये शादी नहीं करनी है। क्या कमी है बेटा सुमन में? सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है, इतने अच्छे घर से है, उस पर पढ़ी लिखी भी है और कमाती भी है। हमने तो बहुत तारीफ सुनी है उसकी और हमें तो सुमन हमारी बहू के रूप में पसंद है। आप भी हाँ कह दीजिए तो हम जल्दी ही उनसे आपकी शादी करवा देंगे। अनुपमा जी माधव को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रही थीं। राधिका से रिश्ता टूटे 2 महीने भी नहीं हुए थे और इस बीच उसके लिए कितने ही रिश्ते देखे जा चुके थे, जिनमें से अनुपमा जी और उसकी दोनों बड़ी बहनों को सुमन सबसे ज्यादा पसंद थी और अब सब मिलकर उस पर दबाव बना रहे थे। मम्मी, उसमें कोई कमी नहीं है, पर उनके और हमारे बीच गहरी खाई है। उनके रहन सहन, तौर तरीके हमारे परिवार से बहुत अलग हैं। वो यहाँ इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकेंगी। मैं उनकी ख्वाहिशों और फरमाइशों को पूरा नहीं कर सकूंगा। हम साथ में कभी खुश नहीं रह सकेंगे। ये सब तुम्हारे मन का वहम है। सुमन को तो तुम पसंद हो और हमारे बारे में सब जानने के बाद भी उन्होंने इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाई है, तो कुछ सोच समझ कर ही ऐसा किया होगा। भले ही हमारा घर उनके घर जितना बड़ा ना हो, यहाँ वो सब सुख सुविधाएं उपलब्ध ना हो, पर शादी के बाद हर लड़की को थोड़ा बहुत जगह और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना ही पड़ता है। फिर उनके घर परिवार में किस चीज़ की कमी है? जब अपनी बेटी देंगे तो हर माँ बाप जैसे उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी मुहैया करवाएंगे ही, ताकि यहाँ उनकी बेटी को कोई परेशानी ना हो। सुमन खुद भी कमाती है, अपने पैरों पर खड़ी है। तुम रहोगे ही तो सब ठीक होगा। बस तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो, ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। हमें तो सुमन हर तरह से तुम्हारे काबिल लगती है। वो इस घर में बहू बनकर आएगी तो हमारा मान बढ़ जाएगा। हमारी जिम्मेदारियों में वो कुछ हाथ बटा देंगी। आपकी शादी के बाद आपकी बहन के बारे में भी सोचना है हमें। यहाँ से कुछ आएगा तो वहाँ देने में काम आएगा। बहन का जिक्र आते ही माधव शांत पड़ गया। असल में उसकी बड़ी बहन कविता का उस वक्त किसी लड़के संग प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसकी जिद थी कि शादी उसी लड़के से करेगी, जिसमें सबसे बड़ी रुकावट थी दहेज। लड़के का परिवार शादी के लिए मान तो गया था, पर उनकी दहेज की डिमांड पूरी करने में माधव असमर्थ था और अब लड़के वालों के तरफ से दबाव बन रहा था कि जल्दी ही दहेज की रकम का इंतजाम किया जाए, वरना वो अपने बेटे की शादी कहीं और करवा देंगे, जिस बात पर कविता रोज घर में हंगामा मचा रही थी। माधव घर का जिम्मेदार बेटा था और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसने अपनी पसंद, अपनी इच्छा और खुशियों की कुर्बानी दे दी और वही हुआ जो होना तय था। उसकी हाँ होते ही झटपट सुमन से उसकी शादी करवा दी गई। उसके पापा ठेकेदार थे, अच्छा खासा पैसा और प्रॉपर्टी बनाई हुई थी उन्होंने। खुद सुमन के नाम पर एक फ्लैट था, 200 गज जमीन अलग ले रखी थी, बैंक अकाउंट में लाखों रुपए पड़े थे। शादी में घर की हर छोटी बड़ी चीज से लेकर कार तक दी थी उन्होंने अपनी बेटी को और साथ ही लाई थी वो 15 लाख दहेज। सामान तो सब सुमन के पापा ने ये कहकर फ्लैट पर भिजवा दिया था कि उनके छोटे से घर में सारा सामान आएगा नहीं और इतना महंगा सामान खराब हो जाएगा, इससे अच्छा है कि वो फ्लैट पर सुरक्षित रहें। फिर भी सब खुश थे। सुमन सुंदर थी तो रिश्तेदार से लेकर आस पड़ोस के लोग सब खूब तारीफ कर रहे थे। सब खुश थी, बस एक माधव के चेहरे पर खुशी कहीं नजर नहीं आ रही थी। इस पूरी शादी के दौरान उसे जो और जैसा करने को कहा गया वो करता चला गया। अपनी बहन की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी की ही कुर्बानी दे दी। रात का वक्त था। माधव ने बहुत हिम्मत जुटाने के बाद अपने कमरे का दरवाजा खोला और नजर सीधे सामने बेड पर बैठी सुमन पर चली गई, जिसने सुर्ख लाल रंग की बंधनी साड़ी पहनी हुई थी। नई नवेली दुल्हन जैसे 16 श्रृंगार किए गहनों से सजी वो बेड पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में कुछ चाहत जुगनुओं से चमक रही थी और लबों पर दिलकश मुस्कान सजाए वो उसे ही देख रही थी। माधव की हिम्मत उसे देखकर ही जवाब देने लगी। उसकी आंखों में झलकती हसरतों को देख चुका था वो, जानता था कि वो क्या चाहती है, उससे क्या उम्मीद करती है, और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उसके कदमों ने तो जैसे आगे बढ़ने से ही इनकार कर दिया था। दिल अजीब सा हो गया था। सुमन की मुस्कान के जवाब में उसने मुस्कुराना चाहा, पर जाने क्यों इस जद्दोजहद में आंखों में पानी आ गया। सुमन से नजरें चुराते हुए बड़ी हिम्मत करके अपने कदमों को घसीटते हुए कमरे में आया और दरवाजा बंद करते हुए बड़ी ही सावधानी से उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। फिर सुमन की ओर पलटते हुए बोला, आप कपड़े बदलकर आराम कर लीजिए, थक गई होंगे। माधव के शब्द सुमन के कानों से टकराए और उसके आगे मुस्कुराते लब सिमट गए। कुछ पल वो खुद से नजरें चुराकर अलमारी की ओर बढ़ते माधव को गहरी निगाहों से देखती रही, फिर अपनी साड़ी को संभालते हुए पलंग से नीचे उतर गई और कदम माधव की ओर बढ़ा दिए। उसके हर बढ़ते कदम के साथ फिजाओं में गूंजती पायलों की छनककार माधव को उससे बढ़ती करीबियों का एहसास करवा रही थी और उसके दिल को अजीब सी बेचैनी से भर रही थी। इधर पलटिए, कुछ बात करनी है मुझे आपसे। सुमन का लहजा गंभीर था और आवाज पीछे से आई थी, मतलब वो उसके पीछे ही खड़ी थी। माधव ने गहरी सांस छोड़ी और अपने मन के भावों को अपनी मुस्कान के पीछे छुपाते हुए उसकी ओर पलट गया। जी कहिए। आज शादी हुई है हमारी, शादी के बाद अभी पहली बार आप मुझे देख रहे हैं और हम दोनों इस कमरे में अकेले हैं, पर ना आप मेरे पास आए, ना मेरी तारीफ की, ना मुझे कुछ दिया, ना मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। इन शॉर्ट, आपने मुझमें कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई और शादी से पहले भी आपका व्यवहार कुछ ऐसा ही था। तब तो मैंने इसे आपकी झिझक और शर्म समझकर कुछ नहीं कहा, पर अब तो हमारी शादी हो गई है, मैं आपकी पत्नी बनकर आपके सामने खड़ी हूं, पर आपके चेहरे पर कोई उत्साह, कोई खुशी नहीं नजर आ रही और ना ही आपके व्यवहार में मेरे करीब आने की बेकरारी झलक रही है, जबकि शादी की पहली रात के लिए तो लड़के बहुत बेसब्र होते हैं। क्या इसकी वजह जान सकती हूं मैं? क्या आपको मैं पसंद नहीं? क्या ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई? क्या आपकी जिंदगी में कोई और लड़की है, किसी और को चाहते हैं आप, इसलिए इस शादी से खुश नहीं? सुमन कोई सीधी सादी बेवकूफ सी लड़की नहीं थी, एक पढ़ी लिखी अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली मॉडर्न सोच की इंटेलिजेंट लड़की थी। माधव के इस निर्मोही जैसे व्यवहार से बहुत कुछ समझ गई थी वो। पल भर को माधव के चेहरे के भाव भी बदले थे, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं, मैं इस शादी से खुश हूं, तभी तो शादी की है। बस इतने दिनों से शादी की तैयारियों और रस्मों में थक गया था, तो मुझे लगा कि आप भी थक गई होंगी, तो आज आराम कर लीजिए। सच में आपकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं है? आप इस रिश्ते से खुश हैं और मुझे पसंद करते हैं? सुमन जांचती निगाहों से उसे देख रही थी, शायद उसकी बातों पर विश्वास करने की कोशिश कर रही थी। माधव ने उसके शक को दूर करते हुए मुस्कुराते हुए हामी भर दी। मैं अपनी पत्नी से भला झूठ क्यों कहूंगा, मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं। अगर कहूं कि लड़कियों से हमेशा से दूर ही रहा हूं मैं, शायद इसलिए आपके साथ भी अभी एक झिझक सी महसूस हो रही है, तो हालत नहीं होगा। मतलब आप मेरे करीब आने से झिझक रहे हैं, इसलिए दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं?
सुमन के इस सवाल पर माधव मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सुमन के तनावपूर्ण चेहरे पर अब राहत के भाव उभर आए। उसने एक कदम और माधव की ओर बढ़ाया और उनके बीच मौजूद दूरियों को कम करते हुए सवाल किया, पर मुझे आपके करीब आने में कोई झिझक या शर्म महसूस नहीं हो रही, तो अगर मैं हमारे रिश्ते में पहल करूं तो बुरा तो नहीं लगेगा आपको? माधव पल भर को उसकी बात सुनकर सकपका सा गया, फिर झेमते हुए बोला, जी नहीं, हक है आपका मुझ पर, पत्नी है आप मेरी। वो तो मेरा भी है आप पर, पत्नी हूं आपकी, और आज शादी के बाद साथ में हमारी पहली रात, फिर ये दूरियां क्यों? लड़के तो आमतौर पर इतने शर्मीले और संकोची नहीं होते, मेरे मेल फ्रेंड्स ने तो शादी से महीनों पहले से ही उसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी। मैंने भी आज की रात के लिए बहुत कुछ सोचा था, बहुत एक्साइटेड भी थी, पर आपका व्यवहार मेरे प्रति इतना नीरस क्यों है? क्या आपका दिल मेरे करीब आकर मुझे महसूस नहीं करना चाहता? क्या सिर्फ मैं ही इस लम्हे के लिए इतनी एक्साइटेड और बेसब्र हूं? आपके मन में कोई अरमान नहीं? सुमन लगातार उसकी निगाहों में झांक रही थी और उसका ये बोल्ड अंदाज देखकर उसके सवाल सुनकर माधव को अब पसीना आने लगा था। सुमन के सवाल पर उसने झिझकते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है, शादी की रस्मों में आप थक गई होंगी, इसलिए आज आराम कर लीजिए, अब तो हमें सारी जिंदगी साथ ही बितानी है, ऐसे बहुत से मौके आएंगे। यकीनन आएंगे, पर ये रात तो दोबारा लौटकर नहीं आएगी, कहते हुए सुमन ने अपनी गोरी पतली बाहों को उसके गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दिया और उसके पैरों पर अपने पैर रखते हुए उसके और करीब हो गई। उसकी इन करीबियों से माधव को अजीब सी सफोकेशन सी होने लगी, दम घुटने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया उसके लिए, पर वो चाहकर भी उसे खुद से दूर न कर सका। आखिर हक था उसका, तो कैसे उसे अपने करीब आने से रोक देता? सुमन ने अपनी बाह की मदद से माधव की बाजुओं को अपनी कमर के इर्द गिर्द लपेट दिया और उसकी निगाहों में झांकते हुए सिडक्टिव अंदाज में बोली, आपको इन करीबियों से ऐतराज तो नहीं? माधव आज खुद को इतना बेबस, लाचार और मजबूर महसूस कर रहा था जितना उसने शायद पहले कभी नहीं किया था। उसका दिल इन सबके लिए राजी नहीं था, संभलने का मौका ही कहाँ मिला था उसे, पर अब इस सिचुएशन से भाग भी नहीं सकता था। सुमन ने अपनी ओर से पहल करते हुए उसके लबों को जैसे ही अपने लबों से छुआ, माधव की पकड़ उसकी कमर पर कस गई और उसने अपनी आंखों को कस के भींच लिया। बंद पलकों के आगे राधिका का मुस्कुराया हुआ चेहरा और वो कजरारी आंखें उभर आईं। अजीब सी बेचैनी और बेकरारी ने मन को घेर लिया, सांसें लेना दूभर हो गया, दम सा घुटने लगा। अगले ही पल चौंकते हुए माधव ने अपनी आंखें खोल दी, नजर अपने सामने और बेहद करीब खड़ी सुमन पर गई और जाने मन में क्या आया कि उसने झटके से सुमन को खुद से दूर कर दिया। क्या हुआ?
सुमन ने आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा और हैरानगी से सवाल किया। माधव उससे नजरें ना मिला सका और निगाहें चुराते हुए बोला, सुमन मैं थक गया हूँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आराम करना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने जल्दी से अपने कपड़े लिए और सीधे कमरे से बाहर चला गया। सुमन अवाक सी खड़ी बस उसे देखती ही रह गई। आंखों के आगे वो लम्हा गुजर गया जब माधव ने उसे खुद से दूर झटक दिया था। आंखों में आंसुओं के साथ गुस्सा और नाराजगी झलकने लगी। उसने गुस्से में अपने सारे गहने उतारकर फेंक दिए और गुस्से में पैर पटकती हुई जाकर पलंग पर लेट गई। शायद यहां गलती उसकी भी नहीं थी। शादी को लेकर बहुत से ख्वाब बुने थे उसने और शादी की पहली रात ही वो सभी ख्वाब टूटकर बिखर गए, जिनकी कीर्चें उसके दिल को लहूलुहान कर गई थीं। और अब गुस्सा, दर्द, तड़प जो भी था वो आंखों से आंसुओं बनकर बह रहा था। टू बी कंटिन्यूड।